प्रातः क्लास चल रहा था 5/11/1966 शनिवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी बुद्धि ऐसी कहती है कि एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश जबकि कलयुग के पीछे सत्युग आना चाहिए तो हिस्ट्री मस्ट रिपीट। किसकी हिस्ट्री मस्ट रिपीट? ये जो सत्युग में देवी देवताएं थे उनकी हिस्ट्री मस्ट रिपीट। फिर ज्ञान भी है कि ब्रह्मा द्वारा आकर के ये चित्र रखा हुआ है ना बीच में, स्थापना करते हैं और ये ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। क्या चित्र रखा हुआ है? इस चित्र के द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा कोई ऊंच पद नहीं है, ये तो पुरुषार्थ ही स्वरूप है। प्रारब्ध स्वरूप नहीं है, पुरुषार्थ का आरंभ है। पुरुषार्थ का अंतिम रूप विष्णु रूप परम पद है। यही चित्र है। जो बीच में रखा हुआ है इसकी स्थापना करते हैं। ये ऊंचते ऊंचे पद है, इसे परम पद कहा जाता है। उनमें उनका बात ही दो है। बोलते हैं कि कमल फूल के समान ये अंतिम जन्म प्राप्त करते हैं। इस अंतिम जन्म में मृत्यु लोक है। अब चूंकि ये मृत्यु लोक है तो मृत्युलोक मुर्दाबाद होता है, अमरलोक जिंदाबाद होता है। जो जिंदाबाद होता है उसको अमर कथा भी कहा जाता है। और बाप ने समझाया है कि तुम सभी बच्चियां पार्वतियां हो, जो अमर कथा सुन रही हो तो अमर कथा तो सिर्फ हम बच्चियां तो नहीं सुनेंगी, बच्चियों के साथ बच्चे भी सुनेंगे। तो अमर कथा सिर्फ माताएं तो नहीं सुनती है ना, ये कन्याएं भी तो हैं, ये कन्याएं तीसरा नेत्र खुलने की कथा सुनती हैं, जिसे तीजरी की कथा कहा जाता है। कौन सी कन्याएं? जो तीसरे नेत्र की खुलने की कथा सुनती है, इसे अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, अक्षर करके तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं। परंतु माताएं सुनकर के अमर बनने से क्या अमरपुरी में फिर पुरुष नहीं होंगी? युगल तो है ना बच्ची, तो ये हुई मनुष्यों की बातें। उन बातों का तथ्य बाप समझाते हैं, ये तीजरी की कथा सत्यनारायण की कथा क्या है, क्योंकि बाप कुछ तो समझाएगा ना कि तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा फलाना ये कहते हैं और ये है राइट बात, और उस राइट बात में भी तुम्हारे को एक ही बात कह देता हूं, ये तो भक्ति है ना बच्चे, और भक्ति का फल भगवान को देना है, और भगवान आकर के क्या फल देगा, क्या फल दिया था? बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे, और देवी देवताओं के अलावा बाकी जो थे वो कहाँ थे? क्योंकि देवी देवता है तो सत्ययुग में ही होते हैं, 16 कला संपूर्ण को देवी देवता कहा जाता है, बाकी जो कम कलाओं वाले होते हैं वो शांति धाम में पड़े रहते हैं नंबरवार। तो ये जो देवी देवताओं को फल मिला अमर लोक का, ये कोई साधु संत संन्यासियों ने तो नहीं दिया ना, ये जो भी साधु संत संन्यासी हैं ये इस दुनिया को छोड़ करके शांति धाम में जाकर के बैठते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग को पसंद नहीं करते, इसलिए शांति धाम में बैठते हैं। तुम तो हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो जो सृष्टि की आदि है लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, वहां से ही सृष्टि में आ जाते हो, तो तुमको ये ज्ञान किसने दिया? बाप बोलते हैं ना, मैं आता हूँ ना तुम बच्चों को भक्ति का फल देने, क्योंकि भक्ति के पीछे ज्ञान है और ज्ञान से इस पुरानी दुनिया से बैराग आता है। और ये भी तुम बच्चों को फिर मालूम हुआ कि भक्ति भी कोई सभी एक जैसी थोड़े ही करते हैं, नहीं, कोई सत्व प्रधान भक्ति करते हैं, कोई रजो प्रधान करते हैं, कोई तामसी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी भक्ति करते हैं। भक्ति भी जो बहुत करते हैं, सत्व प्रधान भक्ति करते हैं तो उनको सात्विक वर्षा बहुत मिलेगा, रजो प्रधान भक्ति बहुत करते हैं तो उनको राजसी वर्षा बहुत मिलेगा, तमो प्रधान भक्ति करते हैं तो तामसी वर्षा मिलेगा। जो बहुत किया है उनको फल बहुत मिलेगा। तो बताओ सात्विक किन्होंने किया, सात्विक भक्ति किसने किया? तुम 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवी देव आत्माओं ने किया। तो जिन्होंने बहुत किया है सात्विक भक्ति, उनको सतयुग में बहुत लंबे समय का सुख का वर्षा मिलता है और सुख भी जीवन में रहते मिलता है, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जो शुरू ही किया है देवी देवताओं ने तो जरूर फिर वो ही देवी देवता बनेंगे ना। जो पूज्य थे और जो फिर पुजारी बने हैं वही तो फिर पूज्य बनेंगे ना। भक्ति मार्ग में पूजा का सवाल है, भक्ति मार्ग में पूजा होती है, पूजा करने वाले होते हैं। तो जो भक्ति मार्ग के आदमी जो जो नंबरवार पूज्य थे और जो फिर पुजारी बने वो ही तो फिर उतने पूज्य बनेंगे ना। तो बताओ भक्ति मार्ग में पहला नंबर पूज्य कौन? जो पूज्य सो पुजारी, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, मैं तो न जब पूज्य बनता हूँ और न पुजारी बनता हूँ। तो बताओ पहले नंबर पूजा किनकी, किसकी है? सोमनाथ की। सोम की कि सोमनाथ की है? सोम किसे कहा जाता है? है सोम चंद्रमा को कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण बनता है, फिर कलाहीन भी बनता है, फिर 16 कला संपूर्ण बनता है। तो 16 कला जो संपूर्ण बनता है उसी की पूजा पहले नंबर में है, है? सोमनाथ की है। कौन है सोमनाथ? सोलह कला संपूर्ण बनता है सोमनाथ है। सोमनाथ 16 कला संपूर्ण बनता है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा का पार्ट किसका है? चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? तो सूर्य कौन है? सूर्य तो 16 कला संपूर्ण नहीं है, वो तो कलाओं से परे है। जो कलाओं से भी परे है, कलातीत है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है, वो कौन है? और अव्वल नंबर 16 कला संपूर्ण बनने वाला कौन है? तो किसकी पूजा अव्वल नंबर में है और किसकी पूजा बाद में है द्वयम नंबर में? अरे जिसकी पूजा अव्वल नंबर में है वो तो जरूर सभी धर्मों में गाया जाता होगा। कहते भी है मुसलमान अल्लाह अव्वलीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और धर्म पिताओं को अव्वल नंबर तो नहीं कहेंगे, न वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो अल्लाह अव्वल दीन है जो देवी देवता सनातन धर्म अव्वल नंबर धर्म है उस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला वो अल्लाह कौन है? है उसकी पूजा होती है या नहीं होती है? होती है किस रूप में? है बिंदु, हाँ बिंदु तो निराकार का नाम है। बिंदु अति छोटे से छोटा बनाया जा सकता है, बिंदु कोई साकारी रूप नहीं है, वो तो निराकार की यादगार है और उसी को याद किया जाता है। लेकिन याद कौन करता है निराकार को, जिसे अव्यक्त भी कहा जाता है। अव्यक्त माने आंखों से देखने योग्य नहीं, व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य। तो जो सदा अव्यक्त है उसकी पूजा होती है क्या? है तो फिर जो लिंग रूप में पूजा होती है, जो पूजा सारी दुनिया में वो लिंग खुदाइयों में सबसे जास्ती अधिक संख्या में पाए गए लिंग मूर्तियां, वो किसकी पूजा है? शंकर की पूजा है। शंकर तो याद में बैठा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है, याद का पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न कर चुका है? पुरुषार्थी है तो अव्वल नंबर कौन है?
अमन पूजा होती है, शिव शंकर की
कंबाइंड पूजा होती है, माने दो है।
निराकार स्टेज में जब शंकर निराकार स्टेज में आते हैं तो
अरे यहाँ प्रश्न ये है कि बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आत्माओं का कि मैं तो न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, तो जो सार्वभौम पूजा होती है जिसकी सारी दुनिया में चित्र मिलते हैं चरित्र की यादगार, वो कौन है? शिव के शिव है क्या जिसकी बिंदु का ही नाम शिव है? है प्रजापिता तो पतित का नाम है, पतित तो कलयुग के अंत में होते हैं, पतितों में सबसे जास्ती पतित तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही बनता है, जो सबसे जास्ती पतित बनता है वो सबसे जास्ती पावन बनता है। तो देवताओं की जो पूजा होती है वो तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, और देवताओं से भी कोई ऊंचे है जो देवताओं को देवता बनाता है, तो वो कौन है जिसकी पूजा भी होती है? है नारायण तो 16 कला संपूर्ण है, जो कलाओं में बंधा हुआ है वो तो देवता है, वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है जो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, उस पहले पत्ते को भी जन्म देने वाला तो कोई होगा। हैं? संगम में जो नारायण बनता है नर से डायरेक्ट नारायण, तो जो संगम में डायरेक्ट नारायण बनता है तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी होगी। है लक्ष्मी नारायण जो कंबाइंड रूप है तो कंबाइंड रूप सार्वभौम है, सारी दुनिया में जिसके चित्र मिलते हैं चरित्र की यादगार है लक्ष्मी नारायण, वो तो दो आत्माएं हो गई।
शिवलिंग की सबसे ज्यादा पूजा होती है,
शिवलिंग की सबसे जास्ती पूजा होती है,
शिव ने जिसमें प्रवेश किया उस लिंग की सबसे ज्यादा पूजा
होती
है। खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली,
लिंग तो साकार है,
लिंग साकार है लेकिन लिंग साकार भी है और निराकार भी है। निराकार कैसे है? लिंग तो देखने में आता है, जो देखने में आता है वो तो व्यक्त हो गया, निराकार कहाँ हुआ? जो देखने में आता है वो तो साकार हुआ ना? है
शिव जैसी अवस्था बन जाती है ना उस लिंग की
भी। हाँ जो साकार रूप है वो साकार रूप शिव की याद में रह करके ऐसी संपन्न स्टेज बनाता है कि शिव समान ही हो जाता है, और आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल भी यही कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कि मैं तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बनाने आता हूँ। बनते तो तुम बच्चे हो ना, है तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से बनते हो कि मैं बना देता हूँ, है तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से नंबर वार निराकारी बनते हो। जितने निराकारी बनते हो उतने निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भी बनते हो। तो जो अव्वल नंबर साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अव्यक्त भी है, भले आंखों से लिंग दिखाई देता है फिर भी अव्यक्त कैसे है। जिस कारण गीता में भी अव्यक्त मूर्तिना शब्द आया हुआ है, क्या वो अव्यक्त मूर्ति है जिससे सारा संसार निकलता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। वृक्ष कैसे निकलता है, बीज से निकलता है। संपन्न वृक्ष है तो संपन्न बीज चाहिए, कटा हुआ बीज है तो वृक्ष भी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता। तो जो संपन्न पका हुआ बीज है, परिपक्व बीज है, पुरुषार्थ में पक्का हो चुका, उसका नाम मनुष्य सृष्टि का बीज लिंग रूप है। और अव्यक्त इसलिए कहा जाता है कि व्यक्त आंखों से दिखाई देता हुआ भी उसको नाक आंख कान हाथ पांव दिखाई नहीं दे, क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये इंद्रियां जिनसे सुख और दुख भोगा जाता है ये इंद्रियां बाप की याद में रहने से, आत्माओं के बाप की याद में रहने से बाप समान बन जाती। चोरों की याद में रहेंगे तो चोरों समान बनेंगे, डकैतों की याद में रहेंगे तो डकैत समान बनेंगे। याद कब आती है, संग किया होगा बुद्धि से तो याद आएगी, और बुद्धि से भी याद तब आएगी जब प्रैक्टिकल में इंद्रियों से रस लिया होगा तो याद आएगी। आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद जरूर आती है। तो लिंग को ना आंख न कान कोई भी इंद्रियां दिखाई नहीं दी है, ये चित्र है, चित्रकार की भाव भंगिमा में बनाया गया है। द्वापर के आदि में पहले पहले चित्र बने थे, लिंग मूर्तियां बनी थी, चित्रकार मूर्तिकार भाव भंगिमा में भर करके वो चित्र और मूर्तियां तैयार करते हैं। इसलिए कहा जाता है भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा भाव होता है वैसा ही फल मिलता है। तो बताया कि जो लिंग मूर्ति है ये लिंग मूर्ति अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। अव्यक्त इसलिए है कि आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु की याद में तैयार होती है। शिव ज्योति बिंदु अव्यक्त है, तो याद में रहने वाला भी 100% याद में रहने वाला होगा तो 100% अव्यक्त बनेगा। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है या निवृत्ति मार्ग का सूचक है? कैसे? प्रवृत्ति में तो दो चाहिए, लिंग तो एक ही है। हाँ, वो साकार भी है और निराकार भी है। जैसे प्रकृति और पुरुष, पुरुष कहा जाता है आत्मा को, पुरु माने रहने का स्थान, पुरी, और शा माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आराम करने वाली कौन? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा, और आत्मा जो पुरुष है तो उसका साथी बनती है संसार में प्रकृति। पांच तत्वों का संघात, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना, पांच तत्वों का जो संघात है उसे कहा जाता है प्रकृति। प्रतिष्ठ है, कृति रचना। कौन है प्रकृति? है प्रतिष्ठ रचना। किसने रची? वो प्रतिष्ठ रचना किसने रची? अगर रचना है तो उसका रचयिता भी होगा। वो कौन है? शिव कहें, शिव कहें या शिव बाबा कहें? शिव नहीं, शिव तो निराकार है। निराकार अकेला कुछ नहीं कर सकता। जैसे आत्मा निराकार है, निराकार आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे ही जो निराकार है जब शरीर में आता है, जैसे आत्मा है ना, माँ के पेट में, गर्भ में जो पिंड है निर्जीव, पांच तत्वों का पुतला, माता है तो पहले अनुभव करती होंगी। जब वो पुतला हरकत करने लगता है तो पहले अनुभव किसको होता है? माता को। तो चार पांच महीने के बाद जब आत्मा प्रवेश करती है उस निर्जीव पिंड में तो वो पुतला हरकत करता है और माता को महसूस होता है। इसीलिए इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में, जब परम पुरुष इस सृष्टि में आता है तो पहले कौन पहचानता है? है माताएं पहचानती हैं या पुरुष पहचानता है? पहले माताएं पहचानती, पहले उनको अनुभव होता है, अनुभूति होती है। तो ऐसे ही है, वो परम पुरुष परम धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आता है तो किस पर फिर होकर आता है? है, अरे अभी तो बताया ये सृष्टि दो से तैयार होती है, पुरुष और प्रकृति। वो पांच तत्वों का संघात प्रकृति परमधाम में नहीं होती, वो तो आत्मलोक है, आत्माओं का धाम है, वहां सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं। और रहती कहाँ है, है? जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, परमधाम कहा जाता है, वो परम पुरुष ही कहता है क्या, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मेरी योनि रूपी माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं षष्ठि का बीज डालता हूं। तो परम नाम तो जड़ है और उसमें परम पुरुष चैतन्य है। अब षष्ठि जो है पुरुष से तैयार होती है या सिर्फ जड़ प्रकृति से तैयार होती है, दोनों चाहिए, दोनों मिलेंगे तो षष्ठि चलेगी, विस्तार को पाएगी। दो नहीं होंगे तो षष्ठि विस्तार को नहीं पाएगी। तो वो परम ब्रह्म इस पांच तत्वों वाली षष्ठि पर जब आता है तो वो कहता है और ब्रह्मा के मुख से कहता है, जिसके लिए गायन है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा वाक्य है, पत्थर की लकीर है, क्या कहता है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो बताओ इस षष्ठी पर जब आता है वो आत्माओं का निराकार, आत्माओं का निराकार बीज परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु तो किसमें पहले पहले प्रवेश करता है, है? माता पिता दोनों में प्रवेश करता है, है? ऐसे कहीं होता है, है? कि षष्ठी में अपनी षष्ठी बढ़ाने के लिए, अपना परिवार वृद्धि करने के लिए कोई पुरुष दो माताओं में बीज डालता हो एक साथ, ऐसा होता है क्या? ये तो बात नहीं है, बात तो यही है कि वो परम पुरुष इस षष्ठि पर जब आता है तो जिस तन में भी प्रवेश करता है, क्या वो तन पांच तत्वों का पुतला ही होगा ना, उस पांच तत्वों के पुतले में प्रवेश करके उसका नाम देता है ब्रह्मा। पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है वो है परम ब्रह्म। परम माने बड़ी ती बड़ी, परे ते परे माँ, कैसी माँ, परे ते परे माँ, जैसे घर परिवार में माँ होती है उससे भी बड़ी दादी माँ होती है, दादी माँ से भी बड़ी है परदादी माँ होती है, परदादी माँ से भी बड़ी तरदादी माँ होती है। तो ऐसे ही इस षष्ठी में 84 पीढ़ियां हुई है, कितनी, 84 जन्मों की 84 पीढ़ियां, उनमें शुरुआत की जो पीढ़ी है उसमें पहली माता का नाम है परम ब्रह्म। वो नाम किसने दिया है, शिव बाप ने नाम दिया परम ब्रह्म, ब्रह्मा नाम देता हूं। तो जिसका नाम परम ब्रह्म दिया वो है परम पुरुष और वो ही परम माता, परे से परी माता, बड़े से बड़ी माँ। तो जिसने प्रवेश किया वो हुआ लिंग, पांच तत्वों का जड़ पुतला। कैसा पुतला? जड़ पुतला। उस जड़त्वमयी पुतले को, सिर्फ जड़त्वमयी पुतले को चित्रों में आजकल दिखाया जाता है। पहले वो चित्र देखने में नहीं आते थे, आजकल वो चित्र देखने में आते हैं। बताओ वो पुतला कौन सा है? राम तो त्रेता वाला राम कहा जाता है भक्ति मार्ग में।
मनुष्य
शक्ति का जो बीज है वो मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ से ही निकला होगा, पुराने शक्ति रूपी झाड़ से। और उस झाड़ से जब निकला होगा तो वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य बीज है, आत्मा तो है लेकिन चैतन्य आत्मा है। लेकिन लिंग रूप में क्यों दिखाया? लिंग इसलिए दिखाया कि लिंग की जो पूजा है वो चार अवस्थाओं से मिलती है। सतो प्रधान स्वर्ण लिंग, रजत लिंग चांदी का, हाँ रजत लिंग सतो सामान्य, और ताम्र लिंग रजो प्रधान, और लोहे का लौह लिंग या पत्थर का। तो सबसे जास्ती तामसी कौन सा हुआ है? लोहा या पत्थर। लोहा और पत्थर जो है वो एकदम तामसी है। तामसी है माने जड़ है या चैतन्य है? जड़ तुम्हारी तामसी। इस सृष्टि में सबसे जास्ती जड़त्वमयी कौन सी आत्मा बनती है? पतितम कामी कांटे में शिव अवतार लेते जब तक संगम युग तब तक। तो जो आत्मा एकदम पतित बन गई, जड़त्वमयी बन गई बुद्धि वाली, ऐसी जड़त्वमयी आत्मा में प्रवेश करता है। इसलिए वो जड़त्वमयी आत्मा वाला जो शरीर है वो शरीर पांच तत्वों का पुतला मात्र रह गया। क्या रह गया? जड़ पांच तत्वों का पुतला। उसी जड़ पांच तत्वों के पुतले को अव्वल नंबर प्रकृति कहेंगे। कैसी प्रकृति? अव्वल नंबर प्रकृति। माना वो एक बीज ऐसा इस सृष्टि में है जो माता भी है और पिता भी है। इसलिए गाते हैं त्वमेव माता। तम माने संस्कृत में एक को कहा जाता है, यूयम दो को कहा जाता है, युवाम तीन या ज्यादा को कहा जाता है। तो त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। माना साकार रूप में है तो साकार आत्मा भी है, लेकिन आत्मा कैसी? जड़त्वमयी। संपूर्ण परम पुरुषार्थी जब बनता है तो वो संपन्न बीज हुआ, और वो संपन्न बीज जो है वो ही लिंग रूप में पूजा जाता है। क्या शिव ने जब प्रवेश किया तो प्रवेश करने मात्र से नहीं पूजा जाता, कब पूजा जाता है? है जैसे माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो किसी को दुनिया में पता चलता है नहीं पता चलता? परिवार की किसी व्यक्ति को नहीं, पड़ोसी को नहीं, कोई कोई पता नहीं चलता। जब वो आत्मा परिपूर्ण चोला धारण करके षष्ठी में प्रत्यक्ष होती है तब कहा जाता है बच्चा आया, बच्चे ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो ऐसे ही शिव आया इस षष्ठी पर, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उसने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, गुप्त पार्ट बजाया या प्रत्यक्ष पार्ट बजाया? गुप्त पार्ट बजाया। अभी भी क्या कहेंगे है? अभी भी कहेंगे गुप्त पार्ट बजाया। अच्छा, अगर गुप्त पार्ट बजाया तो माता है जो प्रकृति रूपिणी माता है, जड़त्व बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि वाली माता, उस माता को कैसे पहले पता चल गया है? ज्ञान के आधार पर माता को पहले ज्ञान नहीं होता है, पता चलता है, लेकिन ज्ञान के आधार पर तो पता नहीं चलता। पता चलता है अनुभूति के आधार पर, अनुभव के आधार पर। माता को ही अनुभूति होती है ना, तो ऐसी ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जो लिंग रूप एक है उसमें लिंग जो है जो व्यक्त है साकार है। प्रकृति साकार है या निराकार? साकार है। तो उसको पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? कि आत्मा ने, सुप्रीम सोल ने, परम पुरुष ने प्रवेश किया, औरों को पता नहीं चलता। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को पता चला क्या है? नहीं चला, नहीं पता चला। अच्छा, जो पांच जड़ तत्वों का प्रत्यक्ष पुतला है, प्रत्यक्ष प्रकृति, एक तो प्रकृति है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांच जड़ तत्वों का संघात, और एक उसका चैतन्य रूप भी है। क्या ये पांच देवताएं माने जाते हैं? कौन? पृथ्वी, जल, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इनके मानिंद कोई पांच चैतन्य आत्माएं भी हैं। जो पांच चैतन्य आत्माएं संगठित होती है तो उनको प्रकृति कहा जाता है। कहां संगठित होती है? पृथ्वी पर, वायु में, अग्नि में, आकाश में। इन पांच तत्वों में से प्रधान तत्व कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी में मिट्टी भी है। कहते हैं ना ये शरीर क्या है, मिट्टी है, तो पृथ्वी भी है। पृथ्वी एक तत्व है, प्रधान तत्व है। प्रधान इसलिए है कि पृथ्वी में कोई पृथ्वी का कण उठाए जाए तो उसमें कुछ न कुछ नमी रहेगी या नहीं रहेगी, वो जल तत्व है। उन कणों के अंदर थोड़ी बहुत वायु रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी, वो वायु तत्व है। और आग भी है या नहीं है, है? अगर आग नहीं है तो पत्थर के दो टुकड़ों को यूं रगड़ा जाए तो आग निकलती है कि नहीं? इसका मतलब वो जो जड़ तत्व है, मिट्टी का रूप है, मिट्टी से ही पत्थर बनता है, तो उसमें अग्नि भी है। और जो कण इकट्ठे होते हैं उनमें बीच बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा सा वैक्यूम रह जाता है, जैसे पेट है, पेट के अंदर हवा है या नहीं, हवा सारी निकाल दी जाए तो कहीं न कहीं वैक्यूम रहेगा या नहीं रहेगा? जो वैक्यूम रहेगा खाली जगह उसे आकाश कहा जाता है। तो पांचों तत्व पृथ्वी के अंदर हैं। ये पृथ्वी रूपिणी जो माता है उसका प्रैक्टिकल रूप जगदम्बा है। जो प्रैक्टिकल रूप है वो बाद में बनता है या पहले? मन के अंदर, बुद्धि के अंदर संकल्प आता है, पहले संकल्प आता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। वो संकल्प फिर साकार होता है तब प्रैक्टिकल होता है। तो पहले पहले शिव ने जिस पांच तत्वों के पुतले में प्रवेश किया, जो इस सृष्टि का सबसे जास्ती तामसी रूप हो जाता है। क्या? कैसा रूप? तामसी रूप हो जाता है। उस समय वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है। अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कोई ने सुना हो न सुना हो, खेतों में जब फसल बोई जाती है या बाग लगाया जाता है तो जो वृक्ष का पहला पहला बीज होता है, वृक्ष हो पौधा हो, उस पौधे का जो पहला बीज होगा उसको चुना जाता है नई फसल डालने के लिए। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का भी पहला बीज जो है पहले तामसी बनता है, सबसे जास्ती तामसी। जो सबसे जास्ती तामसी बनता है तो जैसे क्या हो गया, सन्यासी हो गया या अटैचमेंट वाला हुआ है, वो पहले नंबर का सन्यासी हो गया। वो सिर्फ जड़ तो वही रह गया, भावना उसमें नहीं है। जैसे माताओं में भावना होती है, पुरुषों में उतनी भावना नहीं होती है। तो माताओं में ये पक्की बात है कि माताएं मोह को त्याग नहीं पाती, और पुरुष है निर्मोही बन जाते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो पहला मनुष्य है वो पहले पहले सतो प्रधान भी बनता है और पहले पहले तमो प्रधान भी बनता है। जब तमो प्रधान बनता है तो सृष्टि से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। जो पुरानी सृष्टि से डिटैच हो गया उसको सृष्टि का कोई मोह नहीं रहा। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब हो सीताएं, क्या तुम सब हो सीताएं, राम है एक, राम बाप को कहा जाता है। राम किसको कहा जाता है, बाप को कहा जाता है। वो बाप निर्बंधन है सच्ची की बंधन से और सीताएं सब बंधन में है। काय के बंधन में है, कौन सा विकार होता है माताओं में, मोह का विकार होता है। तो जो एकदम निर्बंधन हो गया, तामसी हो गया, माना जड़त्वमयी बुद्धि होगी। ऐसी बुद्धि जड़त्वमयी बुद्धि हो गई, उस जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्मा में शिव प्रवेश करता है, उसका नाम है ब्रह्मा देता है। बड़े से बड़ी माँ और माताएं, छोटी छोटी माताएं नंबर वन, और वो बड़े से बड़ी माँ। क्यों बड़े से बड़ी माँ क्यों है, बड़े से बड़ी माँ होगी तो बड़े से बड़ी भावना वाली भी तो होनी चाहिए है, नहीं होना चाहिए। और फिर बुद्धि के हिसाब से जड़त्व में ही होती है माता पुरुष के मुकाबले है। बोलो, भगवान पुरुष रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुआ है सभी धर्मों में, या स्त्री रूप में माना जाता है। क्यों, क्योंकि गीता में भी बोला है 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी मन प्रबल है, मन से भी मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है। अब्बल नंबर 3 मनुष्य है, मनुष्य शक्ति का बीज है तो उसकी बुद्धि भी बड़ी प्रबल है। लेकिन उन बुद्धिमान नरों से भी नंबरवार जो पुरुष हैं उनसे भी जास्ती प्रबल वो है, कौन, भगवान। तो जो भगवान है बुद्धिमानों की बुद्धि हुआ ना, तो पुरुष है या स्त्री है, पुरुष है। वो बुद्धिमान की जो बुद्धि है, अब्बल नंबर पुरुष है, परम पुरुष है, अब्बल नंबर धरणी का आधार लेता है जिसे लिंग कहा जाता है, वो कब आधार लेता है, है? सृष्टि के आदि में कि अंत में, अंत में आधार लेता है। किसी को पता, पता नहीं पड़ता। तो जिसका आधार लेता है उस शरीरधारी को, उस 5 तत्वों के पुतले को संग का रंग चैतन्य का लगता है या नहीं लगता है। जिसको जाति संग का रंग लगेगा वो अव्वल नंबर में चैतन्य बनेगा या नहीं बनेगा है, लेकिन कब बनेगा, उस निराकार को जब पहचानेगा तब बनेगा या बिना पहचाने बनेगा? है? पहचानेगा तब बनेगा। तो संगम के आदि में, कलयुग के अंत में जब शिव आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कहें कि वो चैतन्य बना है? वो तनधारी आत्मा जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली हो गई, वो उस समय संग के रंग से चैतन्य बना नहीं बना? क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। तो चैतन्य कब बनता है? आदि में पहचाना नहीं, आदि में पहचाना तब तो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया या नहीं दिया? जिसको क्लैरिफिकेशन दिया वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान करके उस स्वरूप में स्थिर हो जाती है। सन 47 में और नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ा? जब से ओम मंडली नाम बदल करके क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। ब्रह्मा का नाम पहले क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मा वाली आत्मा ने ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ माँ का विशेष गुण क्या है? सहन शक्ति। तो अपने स्वरूप को भावना के आधार पर पक्का करके किसने जाना है? जो मूल बीज है मनुष्य सृष्टि का उसने जाना, या जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है उसने जाना? है, ब्रह्मा ने जाना ना कि हाँ मेरा पार्ट ब्रह्मा का है, नई दुनिया आने वाली है, सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ तो मेरा पार्ट ब्रह्मा का है, विनाश का साक्षात्कार हुआ तो अब ये दुनिया जाने वाली है। ये पक्का बुद्धि में किसको बैठा, किस आधार पर बैठा? साक्षात्कारों के आधार। अनुभव तो साक्षात्कारों का ब्रह्मा ने किया ना, दादा लेखराज ने किया ना। तो जिसको अनुभव हुआ प्रैक्टिकल में उसको पक्का निश्चय बैठ गया। प्रजापिता को तो पक्का अनुभव नहीं हुआ, तो पक्का निश्चय भी है नहीं बैठा। तो जिसको पक्का निश्चय बैठ गया कि मैं ब्रह्मा हूँ, उसके द्वारा शिव ने फिर वाणी चलाई, जिस वाणी को वेदवाणी कहा गया। क्या? वेदवाणी कहा गया। लेकिन जो वेद है वो वेद पहले, या जो सत्य सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र पहले? वेद पहले नहीं है? वेद पहले निकले या श्रीमद् भगवत गीता, गीता का ज्ञान पहले निकला है? गीता ज्ञान पीछे निकला, दो मुख से गीता ज्ञान निकला। माने ब्रह्मा जो है उसको गीता नहीं कहे, नहीं कहे तो किस लिए नहीं कहे? इसलिए नहीं कहे कि ब्रह्मा बाबा को भी अपने स्वरूप के ऊपर निश्चय तब हुआ जब कोई यज्ञ में कोई और माता थी, जिस माता के लिए मुरली में बोला है कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए, माने मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए। तो जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाती थी, ज्ञान देती थी, वो ऊंचे हुए, पावरफुल हुए, या मम्मा बाबा ज्यादा पावरफुल हुए? है ऊंचा कौन हुआ? आदि वाली आत्माएं ऊंची हुई ना, जिनके लिए बाबा ने बोला है शिव ज्योति बिंदु जो सुप्रीम सोल है उसने ब्रह्मा मुख से बोला है। क्या बोला है? मैं अकेला नहीं आता हूँ, माना मैं इस सृष्टि पर अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। किसके साथ? तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। इसलिए गायन है त्रिमूर्ति शिव, क्या त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति विष्णु नहीं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं, क्या त्रिमूर्ति शिव। कौन कौन सी तीन आत्माएं? ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा? दादा लेकिन साथ है। हाँ, यज्ञ के आदि में कोई माता थी, दो माताएं थी जिक्र आया है, तो उनमें एक माता जो बुद्धिमान थी, क्या बुद्धि में तीखी, और एक माता बुद्धि में उतनी तीखी नहीं लेकिन वाचा चलाने में तीखी, क्या वाचा बड़ी तीव्र। तो जिसकी वाचा बड़ी तीव्र थी, कलयुग में क्या होता है? है जो वाचा जोर जोर से चलाता है, धारा प्रवाह से चलाता है, भाषण करता है, उसे लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, या जो भारत के बुद्धिमान तबके के अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बुद्धिमान जो भारत को छोड़ करके विदेशों में जाके सेवा कर रहे हैं पढ़ लिख करके, उनको ऊंचा मानते हैं, या भाषणबाजी करने वाले नेताओं को ऊंचा मानते हैं? है पंडित सोई सोई गाल बजावा। संसार में ऐसा संसार बन जाता है कि जो बहुत गाल बजाते हैं, बहुत बोलते हैं, उनको पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसे ही सच्ची पर भगवान बाप जब आते हैं सुप्रीम सोल, तो उस समय तीन आत्माएं हैं। एक आत्मा तो वो जो बिल्कुल जड़त्वमयी बन गई, क्या कहें, बड़ी अम्मा, दादी अम्मा, बुढ़े हो जाते हैं ना, जो 5000 की पुरानी बुढ़िया हो गई शरीर से। और फिर दूसरी वो है जो बुद्धि की देवी कही जाती है, है सरस्वती। और सरस्वती वाक देवी भी कही जाती है, वाक माने वाचा, वाचा की भी देवी है और बुद्धि के भी देवी है। तो दो माताएं थी, जो बुद्धि की देवी थी उसने भी साक्षात्कारों को सुना, जो उसने नहीं बोले उन साक्षात्कारों को मनुष्य सृष्टि के बीज के सामने, मनुष्य सृष्टि के पिता के सामने बोलने वाली थी बड़बोली। हाँ जी जगदम्बा, उसने बोला, मैंने वाचा वाली ने वाचा चलाई, और जिसके लिए वाचा चलाई सुनाने के लिए वो था मनुष्य सृष्टि का बीज अति तामसी, जड़ तो वही था या चैतन्य बुद्धि थी, है जड़ तुम्हारी बुद्धि थी, उसमें प्रवेश किसने किया? जो सबसे जास्ती बुद्धि में चैतन्य है आत्माओं के बीच में, उसने प्रवेश किया और प्रवेश करके उस तन को ऑक्युपाई किया। पिता क्या है? पिता रचयिता है, और जिसको ऑक्युपाई करता है अपने अंदर में, अंडर दी कंट्रोल लेता है वो माता, तो वो माता हो गई। उस माता में प्रवेश करके शिव ने उन साक्षात्कारों का रहस्य सुना दिया। सुना किसने? दोनों माताओं ने सुना। एक ने सिर्फ सुना, समझा? समझा नहीं। किसने? बड़बोली ने, लंबी जीभ वाली ने। क्या किया? सुना लेकिन समझा नहीं। और दूसरी ने सुना तो, और सुनने के बाद धारण किया और मनन चिंतन मंथन किया। बुद्धि का काम क्या है? थोड़ा मंथन करना। तो बुद्धि से फैसला किया और उस फैसले को ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे दोनों यज्ञ में जब मिले, ओम राधे पहले तो नहीं थी, बाद में आई ना, तो ओम राधे और मम्मा ब्रह्मा बाबा दोनों जब इकट्ठे हो गए तो उनके सामने बोला, ब्रह्मा बाबा के सामने बोला। ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उसने भी सुना। किसने? ओम राधे ने। तो आत्मिक रूप में दो आत्माओं ने अपने स्वरूप को पहले पहचान लिया। कौन कौन ने? शशि के पहले पत्ते ने, और पहले पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता कौन? ओम राधे। उन्होंने जान लिया, समझ लिया। तो समझने वालों में जो दो हुए, जिन्होंने अपने आत्मिक स्वरूप को पहले पहचाना, वो इस शक्ति रूपी वृक्ष के पहले दो पत्ते बन गए और फाउंडेशन वहीं पड़ गया। शूटिंग पीरियड में सब आदमी सृष्टि के आदि में जब उन्होंने सुना तभी फाउंडेशन पड़ गई। सन 47 से जो फाउंडेशन पड़ा था वो पत्तों के रूप में, आत्मा के रूप में अपना साकार रूप धारण किया और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्मा हूँ, और ये जो संगठन तैयार होता है ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, ब्रह्मा कुमारियों का संगठन तैयार हुआ। ओम मंडली खत्म। ओम मंडली का मतलब क्या? आ ऊ मा, आ माने ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, परम ब्रह्म विष्णु, कौन
विष्णु कौन
है? अरे विश्व विजय करके दिखलावे तब होए पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या कपड़े के झंडे ने विश्व विजय की? तो तीन शरीर रूपी वस्त्र वो कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। सन 47 में या सन 36 में ही? विश्व विजय करने वाली जो तीन आत्माएं हैं उनका आरंभ कब कहें, आदि कब कहें? हैं? हैं? सन 36 से कहेंगे ना, क्योंकि शिव तो सन 36 से ही आया। जब आया तो तीन आत्माएं साथ साथ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उनमें ब्रह्मा किसको कहें है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कौन है ब्रह्मा? है बड़ी माँ। ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला या समझने समझाने वाला? ब्रह्मा अर्थात सुन लिया और दूसरों को सुना लिया। माता क्या करती है? हैं? क्या करती है? ज्ञान सुनती है और दूसरों को सुनाती है। ये समझती है कि वो साकार सो निराकार कौन है, समझती है कौन है कौन होगा। और सृष्टि के आदि में भी कौन था जिसके लिए कहा जाता है सी भी सत्य हो सी भी सत्य? क्या सत्य ही है, सत्य ही होगा और सत्य ही भूतकाल में था। जो सत्य है उसका कभी विनाश विनाश नहीं होता। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी उसका कभी विनाश नहीं होता। वो कौन? नहीं, शंकर को जिसे कहते हैं, जिसकी मूर्ति बनती है, जिन देवताओं की भी मूर्तियां बनती हैं, पूजी जाती हैं, वो उनका संपन्न रूप पूजा जाता है या पुरुषार्थी अधूरा रूप पूजा जाता है? संपन्न रूप पूजा जाता है ना। तो संपन्न कोई देवी देवता या बड़ा देवता महादेव वो अभी संपन्न बना है? है नहीं, अभी तो कोई संपन्न नहीं बना है। जब संपन्न रूप धारण करेगा, शिव समान रूप धारण करेगा, तो पहचान बता दी अव्यक्तवाणी ने। क्या? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी तो उसकी बुद्धि में, उसकी आत्मा में, दिल से ये आवाज निकले और एवरलास्टिंग निकलती ही रहे कि मेरा बाप आ गया। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो कोई नहीं कहता कि बच्चा आया, कोई कहता है? क्योंकि गुप्त पार्ट है ना, बच्चा है या बच्ची है पता नहीं, मरा हुआ पैदा होगा, जिंदा पैदा होगा, टांग होगी नहीं होगी, हाथ होगा नहीं होगा, कुछ पता है कुछ पता नहीं। जब वो बच्चा बाहर आता है तो कुटुंब के लोग, परिवार के लोग बोलते हैं ना कि बच्चे ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, देखते हैं आंखों से तभी बोलते हैं ना, पड़ोसी भी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पड़ोसियों ने भी कान से आवाज सुनी ना, वाह वाह अरे पड़ोस में बच्चा आ गया। पक्का मानते हैं या अभी कहते हैं आया कल कहें नहीं आया? हैं? पक्का पक्का मानते हैं। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जिस बीज से ये 500-700 करोड़ पत्ते निकलते हैं, है, और उसी बीज में समा जाते हैं, उसकी यादगार है सृष्टि वृक्ष का वो साक्षात्कार से बनाया हुआ चित्र झाड़, जिसके ऊपर वो नग्न रूप बैठा हुआ है, सारी आत्माएं उसकी तरफ खींच रही है, क्या सारी आत्माएं उस तरफ खींची ही चली जा रही है, आकर्षित होती चली जा रही है, जिसका नाम मनुष्यों ने कृष्ण भगवान दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्यों? कृष्ण माने आकर्षण करने वाला, सारी सृष्टि के प्राणी मात्र को आकर्षण करता है, खींचता है, किस रूप में? मनुष्यों को इस रूप में खींचता है, हिदायत देता है, ब्रह्मा मुक्ति द्वारा कहता है मन मना भव, क्या कहता है? मन मना भव, मन माने मत, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, क्या कहता है? मेरे मन में। कौन कहता है? कृष्ण कहता है। बाबा कहते हैं कृष्ण तो वास्तव में मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते का नाम है, मेरा नाम कृष्ण नहीं है, मेरा नाम क्या है? है? मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता ही नहीं, ऐसे नहीं शिव को कृष्ण कह दिया जाए, नहीं, मेरा नाम शिव है, शिव माने ही कल्याणकारी, क्या आज भी कल्याणकारी, कल भी होगा कल्याणकारी, और पहले भी था कल्याणकारी, वो कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं, इसलिए शिव है उसका नाम, जैसा काम वैसा नाम। तो ये किसने कहा मन मना भव? कौन सी आत्मा ने कहा? अरे सब आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कि सुन, अभी तक यही नहीं जाना ये कौन ने कहा, किसने कहा? अरे 80 साल होने आए, ज्ञान में चलते चलते यही पता नहीं चला ये मन मना भव कौन कह रहा है? क्यों? आत्माओं के पिता शिव ने नहीं कहा?
वो पिता में है ना, शिव भी तो उसी पिता में है ना, मनुष्य
तो वो नहीं कहता, जो मनुष्य शक्ति के पिता में है वो नहीं कहता मन मना भव। नहीं नहीं शरीर ले लिया ना, तो कहने वाला शिव है या नहीं है? उसको मन है, अरे ये क्या बात, जब उसको मन है ही नहीं तो कहेगा क्यों, बुद्धू है क्या? हमारी आत्मा भी शरीर धारण करके ही बोलती है, जैसे हमारी आत्मा है निराकार, वैसे शिव भी, उसने भी शरीर धारण किया, जैसे भूत प्रेतों की आत्माएं होती हैं, बिना शरीर के बोलती है क्या, शरीर में प्रवेश करती है तब बोलती है, तो ऐसे ही जो सुप्रीम सोल है, परम पुरुष है, उसने भी प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला वेदवाणी में, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो बोले किसने? शिव ने बोले, वही त्रिकालदर्शी है ना, उसने बोल, फिर ये कौन कहता है मन मना बहु, मेरे मन में समा जा। दोनों कहते हैं, दोनों इकट्ठे आवाज कर गीत गाते हैं।
आत्मा तो बोलती नहीं है, आत्मा प्रवेश होके वो बोलती है।
मैंने बोलने वाली आत्मा है, शरीर जो है डब्बा है, जैसे स्पीकर होता है डब्बा है, बोलने वाली आत्मा बोलती है, स्पीकर और आवाज जोर से बोलता है, तो बोलने वाला कौन है? है? शंकर बोलता है, शंकर बोलता है मन मना भाव, खुद याद कर रहा है, खुद पुरुषार्थी है, है? बोलने वाली हिदायत देने वाली आत्मा कौन सी है? सिर्फ सुप्रीम सोल निराकार,
साकार बाप है वो।
साकार बोलता है,
साकार बाप है।
जिस समय बोलता है, जिस समय बोलता है निराकार या साकार का मेल, तो जिसे शिव बाबा कहते हैं, जो बोलता है वो निराकार संपन्न आत्मा बोलती है या अधूरी पुरुषार्थी आत्मा बोलती है? संपन्न आत्मा शिव, उसको मन है पता नहीं,
आधार लिया ना, आधार लेके बोल रहे ना।
हाँ, उसको मन है, उसको तो मन नहीं है, तो मन कौन सी आत्मा को है?
ब्रह्मा मेरा मन है,
ये तीसरी आत्मा घुस पड़ी। मने दादा लेखराज ब्रह्मा बोलता है मेरे मन में समा जा और हाथ फेल होकर के मर जा। ब्रह्मा वाली आत्मा भी प्रवेश है जब ये वाणी बोल रही है मन मना भव। ये मुरली में जो वाणी आई है, वाक्य आया है मन मना भव, ये बोलने वाली आत्मा कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा बोल रही है, जो महापतित है वो कहती है मेरे मन में समा जा, पतित मन में, मेरे मन में जो संकल्प आए पतित पतित वो ही तेरे मन में आने लगे। मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना, शंकर जो संकल्प चलाए, शंकर जो वाचा बोले, शंकर जो कर्म इंद्रियों से कर्म करे, वो कर्म फॉलो नहीं करना है। और आप उल्टी बात कह रहे हैं, शंकर को फॉलो करना है मन मना भव। शंकर कहता है मेरे मन में समा जा, शंकर विष पीता है तो हम भी पीना शुरू कर दे। शंकर वाली आत्मा कहती है,
शिव वाली आत्मा है, शिव वाली आत्मा नहीं कहती,
शिव वाली आत्मा कहती है।
वही तो धन का आधार लेके मुरली तो वही चलाते हैं ना,
नहीं ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है या नहीं बोलता है मुरली में? तो वो नहीं बोल सकता। अरे बोल सकता है कि नहीं? हाँ, तो वो ही बोलता है, वो परम ब्रह्म वाली आत्मा जो ब्रह्मा है पहले नंबर का, वो भी इंटरफियर करके बोलता है। क्या बोलता है? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। यज्ञ के आदि में भी वो बोलता था, जब गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन दे रहा था यज्ञ के आदि में, क्या यज्ञ के आदि में क्या सुनाते थे? गीता के ही श्लोक सुनाते थे और उनके अर्थ सुनाते थे, बता अर्थों का व्याख्या करते थे। मनुष्यों ने जो व्याख्या की वो विकारी बुद्धि से की या निर्विकारी बुद्धि से की? विकारी बुद्धि से की,
इसलिए वो व्याख्या सारी झूठी हो गई।
और भगवान शिव आकर के जो व्याख्या देते हैं वो व्याख्या सही व्याख्या है, लेकिन जो सही व्याख्या है उस व्याख्या में भी शिव के साथ बोलते समय ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करती है, तो उसने इंटरफियर करके बोला मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अब हर बाप मन कहो दिल कहो, बाप का दिल किसके ऊपर होता है परिवार में? ऐ बच्चे पर, बड़े बच्चे पर। जितने भी राजाएं हुए उन्होंने राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी। तो वो मनुष्य सृष्टि के बाप जो आत्मा है वो शिव बाप की याद में जिस सेकंड होती है, शिव की याद में, निराकारी याद में, उस समय वो कहती है एक शिव बाबा दूसरा नकुल। मन में कौन हो, बुद्धि में कौन समाया हुआ हो? एक शिव बाबा। एक शिव बाबा का मतलब ये हुआ एक ज्योति बिंदु की याद। क्या संपन्न स्टेज क्या है? सब बता जी, हर वज ये सारा संसार भूल जाए, जड़ चेतन सब भूल जाए, क्या याद रहे? एक बाप ज्योति बिंदु याद रहे। वो ही झाड़ के चित्र के ऊपर जो बैठा है सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है वो है। मत मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप का मन है ही नहीं, उसमें समाने की बात ही नहीं। और निराकार में जो समाएगा, जैसे धर्म पिताएं हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, वो निराकार की याद में समाते हैं तो परमधाम में पड़े रहते हैं कि नहीं? तो परमधाम में पड़े रहना है हमेशा। क्या चाहते हैं, किस तरह का मन मना भव? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो एवरलास्टिंग निराकार है, आज भी निराकार है, कल भी निराकार रहेगा, और पहले भी निराकार था, वो कभी साकार बनता ही नहीं, सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी याद में समा जा। है? अगर उस याद में समा जाएगा तो कहाँ पड़ा रहेगा? वहीं पड़ा रहेगा। कोई आत्मा ये चाहती है मैं सदा काल के लिए निराकारी दुनिया में पड़ी रहूं, सत्य प्रधान सत्य की दुनिया जो है, नई दुनिया जिसे कहा जाता है, उसमें ना आऊं? अरे मुसलमान है वो भी जन्नत को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो भी पैराडाइज को मानते हैं, याद करते हैं ना, स्वर्ग के नाम से सबके मुंह में पानी आता है ना, सब चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले, और एक जन्म के लिए सबको स्वर्ग मिलता भी है, ये तो कोई नहीं चाहता। कि हम परमधाम में जड़त्वमयी आत्मा हो करके पड़े रहे न सुख भोग है, सुख मिले ही नहीं। वैसे जैसे रात्रि में गहरी नींद आ जाती है और कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी स्टेज कोई चाहता है? अगर कोई चाहता हो तो सांप से कटवा ले, सांप काट लेता है जिसको, एकदम गहरी नींद में सो जाता है, कुछ भी याद उसको नहीं रहता। ऐसे कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? पहले ये चाहते हैं कि तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अशांत तन है, अशांत मन है, तो शांति मिले, माने बुखार उतर जाए। बुखार उतरेगा तो चैन आएगा, शांति आएगी ना। पहले वो चाहता है, फिर उसके बाद क्या चाहता है? बुखार उतर गया, दो चार दिन खाना मत दो, कुछ भी मत दो, तो पड़ाएगी आत्मा की नहीं, तो सुख चाहता है इंद्रियों का। ऐसे ही है इस मनुष्य शक्ति की हर आत्मा ये चाहती है कि हमें दुख न मिले, क्या मिले? सुख मिले। एक तो दुख से निवृत्ति चाहती है, दुख से छूट जाए, शांति मिले। फिर शांति अकेले से भी पूर्ति नहीं होती, क्या चाहता है? हमको सुख भी मिले। तो अगर निराकार को याद करेंगे तो निराकार को क्या मिलता है? हैं? कितने साल की शांति? 5000 साल की शांति ही शांति। इस सृष्टि पर भी आता है तो इंद्रियों का सुख भोगता है, भोगता है नहीं भोगता? अंदर से शांत रहता है ना, है कि अंदर से जो मनुष्य हैं मन वाले, उनका मन उत्तेजना में आता है, सुख भोगने की उत्तेजना में आता है, तो कुछ भी करते हैं उल्टा पलटा, किसी को दुख हो या सुख हो इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे शिव कभी उत्तेजना में आता है क्या? कभी नहीं उत्तेजना में आता। इंद्रियों से जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, कर्म तो करता है लेकिन अशांत कभी नहीं होता। और भिखारी क्या करता है? भिखारी शांत होता है या अशांत होता है? अशांत होता है। तो यही बताया कि मन मना भव, ये कहने वाली शिव की सोल नहीं है। कौन सी सोल है? हैं? कौन से ब्रह्मा? परम ब्रह्म वाली आत्मा जब आत्मिक स्टेज में टिकी हुई होती है उस समय बोलती है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और पुरुषार्थ करते करते जो आत्माएं जिस नंबर में उस झाड़ के ऊपर बैठे हुए के मन में जो ज्योति बिंदु की याद है, उस ज्योति बिंदु की याद में समाती जाती है, वही नंबर उनका निश्चित हो जाता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला है, 700 करोड़ उन नंबर तो होंगे ना। तो जिस नंबर पर जो आत्मा पहुंचेगी वही नंबर उसका बनेगा। 500 करोड़ में नंबर हो, 33 करोड़ में नंबर हो, 10 करोड़ में नंबर हो, 9 लाख में नंबर हो, ये सब मालाएं तो है ना, ये सब मालाएं नंबरवार है ना। 4.5 लाख में नंबर हो, रुद्र यज्ञ रचे जाते हैं तो बहुतेरे यज्ञ जो रुद्र यज्ञ रचे गए उनमें लाख लाख शालिग्राम बनाए गए। कोई कोई सेठ ऐसे होते थे जो 2-3 लाख भी बनाते थे, कोई ऐसा भी हुआ होगा जिसने 4.5 लाख शालिग्राम बनाए। तो चाहे 4.5 लाख नंबर में आ गए, फिर उससे ऊंची माला 16,000 के नंबर में आवे, उससे भी ऊंची आला ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं उस नंबर में आवे, उससे भी ऊंची माला शिव की माला, क्या रुद्र माला, वो है राजाओं की माला। एक शिव ही है जो क्या बनाता है, हैं? राजा बनाता है, राज करना सिखाता है, राज की बात बताता है, राजयोग सिखाता है। राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर के लिए राजाई का वर्षा देता है। उस 108 की माला में आवे, उससे भी ऊंची है 8 की माला। वो शिव के बहुत प्यारे बच्चे हैं। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है शास्त्रों में, उन्हें अष्ट दिग्पाल कहा है। दिग माने दिशाएं, 8 दिशाओं की पालना करने वाले, 4 दिशाएं मुख्य और उनके 4 कोने, कितने हुए 8, 8 दिशाओं की पालना करने वाले अष्ट दिग्पाल। वो ऐसे बच्चे हैं जो भगवान की पढ़ाई हुई, जो पढ़ाई है विद्यालय है विश्वविद्यालय में, सबसे ऊंचा नंबर पाते हैं, पास विद ऑनर। कोई भी पाप की सजा नहीं भोगते, इतनी गहरी याद में रहते हैं कि अपने सारे पापों को भस्म कर लेते हैं। उन बच्चों को शिव बहुत प्यार करता है और सर के ऊपर वो 8 की माला रखी हुई दिखाते हैं। और उन 8 में भी है, जैसे 8 रत्नों की, 9 रत्नों की अंगूठी होती है, उनमें 8 आसपास हैं और बीच में हीरा डालते हैं। तो ऐसे ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठी में हीरो पार्टधारी का पार्ट भी है, जो बाप समान पुरुषार्थ करके स्टेज प्राप्त कर लेता है। निराकारी स्टेज, वही निराकारी स्टेज है जो दुनिया में सार्वभौम पूजी जाती है। क्या सारी भूमि पर उसकी यादगार मिल रही है, सबसे जास्ती मंदिर दुनिया में उसके हैं। तो बताया कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की लिस्ट में पहला नंबर किसका? जिसको पहले नंबर में पूजा जाता है, कौन है? है राम का चित्र पूजा जाता है, त्रेता में राज करता है और द्वापर में उतरती कला में पूजा जाता है। द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है, पूजने का काम शुरू होता है, तो पहले पहले किसकी पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। वो लिंग अकेला है क्या? है निवृत्ति में है, प्रवृत्ति है। क्या दिखाया गया प्रवृत्ति में? है क्या दिखाया गया? निराकार और साकार की प्रवृत्ति दिखाई गई। निराकार हीरा बिंदु और साकार लिंग, निराकार आत्मा और साकार शरीर। कैसा शरीर? ऐसा पुरुषार्थी शरीर जो निराकार की याद में रह करके अपनी इंद्रियों को भूल जाता है, इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए उस मूर्ति में वो इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। इसलिए गीता में कहा है ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से पैदा होता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में महामृत्यु के समय समा जाता है। कैसे समा जाता है? याद से। याद जो है वो निराकार की सहज है या साकार की याद सहज है? साकार की याद सहज है। जन्म जन्मांतर साकार को याद किया है पूर्व जन्मों में, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है क्या? साकार को याद करने की, साकार में मोह लगाने की, साकार को साकार में अटैचमेंट लगाने की, तो याद आ जाता है आसानी से। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ज्यादातर उस साकार की याद में खिंचे चले जाते हैं। अंतिम समय में महामृत्यु के समय ज्यादातर मनुष्य आत्माओं को उस साकार स्वरूप के ऊपर निश्चय बैठ जाता है क्या, कि यही ऊंचे से ऊंचा अल्लाह है। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचे, हमारे यहां भी कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचा और नीचा इस सृष्टि पर कहा जाता है या आत्मलोक में कहा जाता है? इस सृष्टि की बात है, ऊंचा तो ऊंचा और नीचे से नीचा। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, मनुष्य सृष्टि झाड़ पर जिसे दिखाया गया है सबसे ऊपर बैठा हुआ, वो सभी मनुष्य मात्रों को, मनुष्य मात्र ही तो क्या, प्राणी मात्र की आत्माओं को खींच कर अपने में ज्योतिबिंदु स्वरूप में समा लेता है और फिर सृष्टि के आदिकाल में नंबरवार उनको छोड़ता जाता है। तो बताया वही रूप है आपे ही पूज्य, तो आपे ही पुजारी नंबर वन, अव्वल नंबर। सीढ़ी, सीढ़ी का जो चित्र है वो भी पहले नहीं बताना है क्या, कोई आत्माएं समझने आती हैं तो पहले उस चित्र पर नहीं बताना है। कौन से चित्र पर बताना है? त्रिमूर्ति के चित्र पर बता। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति है जिसका बाप कहते हैं? पहले बाप का परिचय दो है। शंकर की मूर्ति, वाह। शास्त्रों में तो लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, माने शंकर महाईश्वर महेश्वर शंकर, परंतु नहीं, उनको नमन नहीं करता हूँ। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ। शंकर को तो नहीं बताया, न ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, शंकर माने राम की आत्मा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे, पूछो तो यही निकलेगा शंकर। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो क्या निकलेगा? ब्रह्मा। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर पहले समझाने के लिए आत्माओं का बाप शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय पहले दो। तो कौन सा चित्र है, किस तरफ इशारा करें? है
आत्माओं के बाप का परिचय।
अरे कौन से चित्र की तरफ इशारा करें? त्रिमूर्ति में चित्र नहीं है क्या? चित्र तो हैं। तो कौन से चित्र की ओर इशारा करें? हेलो, नौ दिन चले और आई कोर्स। ये क्या बात हुई? एक घंटा 30 मिनट हो गया, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। पूछा गया त्रिमूर्ति के चित्र में पहले समझाना है और उसमें भी बाप का परिचय पहले देना है। किसका परिचय देंगे, कौन सी मूर्ति का? अरे मूर्ति का बताओ ना, मूर्ति त्रिमूर्ति के चित्र में मूर्तियां हैं ना, उनमें से कौन सी मूर्ति का परिचय देंगे? बाप तो बता दिया, बाप का परिचय दो। बाप का परिचय नहीं देते और दुनिया भर की आलाद आते हैं बैठ करके जिज्ञासुओं के सामने, तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, आते ही नहीं। आते हैं तो ज्यादा टिकते ही नहीं, ज्यादा टिकते हैं तो थोड़े दिनों के बाद फिर भाग जाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में वो बाप कौन है जिसके लिए मुरली ने आत्माओं के बाप शिव ने ब्रह्मा मुख से बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ है? एक शिव बाबा है, सदा कायम है। शिव बाप सदा कायम नहीं है, वो आत्माओं का बाप है। क्या वो ग्रैंडफादर नहीं है, बाबा नहीं है? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है। क्या वो शिव का भी रूप है, बाबा का भी रूप है, साकार भी है? तो उसका परिचय दो जो सदा कायम है, संगम में भी कायम, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी सदा कायम है। इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसका लोप कभी कभी नहीं होता, उसका जन्म भी कभी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। कोई नहीं बताता उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है जन्म देने वाला। तो बताओ ना, त्रिमूर्ति के चित्र में परिचय देना है। 80 साल होते आए ये बात बताते बताते
हैं।
लो शंकर की मूर्ति को परिचय दो। शंकर की मूर्ति याद में बैठी है कि नहीं?
बैठी है ना।
तो याद में बैठी है तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी का परिचय दें। कौन है? जी 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 नहीं, त्रिमूर्ति की चित्र में पूछा। माताएं माताएं बोलती जा रही हैं, भाई लोग कोई बोलते नहीं है? दूर सबसे पीछे फोकस डालो है। शंकर का बता, शंकर की मूर्ति नहीं है, व्यक्त में नहीं है तो मंदिरों में मूर्ति कहाँ से रखी हुई है? जैसे देवताओं की मूर्ति है,
लिंग बता रखा
है,
शंकर नहीं बता रखा, मंदिर में लिंग बता रखा।
तो शंकर नाम है उसका, शंकर तब कहा जाता है जब संकरण होता है कई आत्माओं का, तब शंकर है। जिस एक का नाम एक की मूर्ति की तरफ इशारा करना है, पहचान देनी है, वो शंकर है। उसमें कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है उस मूर्ति में। वो एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। अभी भी सच रूपी रंगमंच पर संगम युग में भी अभी भी वो पार्ट बजाय रहा है। पहले भी हीरो पार्टधारी था, मध्य में भी हीरो पार्टधारी और अंत में भी हीरो पार्टधारी ही रहेगा। त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है?
विष्णु जो तुम्हें माता पिता का कंबाइंड रूप है।
तो एक मूर्ति नाम बताओ, विष्णु ब्रह्मा शंकर का जो भी तुम्हें बताना हो उसे बताओ। है विष्णु है, है
पर ब्रह्म जिसे कहते हैं।
कौन है? त्रिमूर्ति के चित्र में कहाँ है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए बाबा कहते हैं दीवार जितने ऊंचे चित्र बनाओ कि अंधे की आंखों की, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले, हे भगवान कैसे कैसे बाबा बोलते हैं है? त्रिमूर्ति के चित्र में वो पॉइंट वो इशारा करो, उस मूर्ति की तरफ इशारा करो, उसे एक का परिचय दो
है? कौन है?
विष्णु ही हुए ना परम भक्ति बाबा।
मूर्ति कौन सी है?
बीच में चले रहो
है,
बीच में है,
बीच में है विष्णु की मूर्ति, वो परम ब्रह्म है। जो विष्णु है वो साकार स्टेज में दिखाई देता है या निराकार स्टेज में दिखाई देता है? तो जो साकार है वो परम ब्रह्म है, वो देवता है या परम ब्रह्म है? देवता है। अरे ऊपर लिंग नहीं दिखाया गया तीन मूर्तियों के ऊपर? दिखाया गया कि नहीं? तो उसकी तरफ क्यों नहीं बुद्धि जाती? वो भगवान है इसलिए बुद्धि नहीं जाती। यही तो बोला, यही तो बोला शंकर, शंकर बोला। ये कहाँ बोला जो ऊपर शिवलिंग दिखाया गया है? हाँ वो अव्यक्त भी है, वो व्यक्त भी है, वो निराकार साकार, निराकार सुसाकार, वो बाप और दादा दोनों का कंबाइंड रूप है, वो माता और पिता दोनों का कंबाइंड रूप है, इसलिए बोला है एक मुरली में। कन्नड़ भाषा की मुरली बताते हैं कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तीनों को मना कर दिया, फिर किसको याद करना है? साकार में माने प्रवृत्ति मार्ग का जो पक्का है, आदि में भी मध्य में भी और अंत में भी पक्का है, उसको याद करना है। प्रवृत्ति से ही ये सृष्टि चलती है, निवृत्ति मार्ग सन्यास मार्ग से ये सृष्टि नहीं चलती, अगर चलती भी है तो अल्पकाल की। विनाशी सृष्टि चलेगी, अविनाशी सृष्टि नहीं चलेगी। इब्राहिम की इस्लाम धर्म हो, बुद्ध का बौद्ध धर्म हो, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो, ये अविनाशी धर्म खंडों में जीवित रहते हैं या विनाशी धर्म खंड में जीवित रहते हैं? है विनाशी धर्म खंड है, इनके धर्म भी विनाशी है, धर्म खंड भी विनाशी है, धर्म भी विनाशी है। आज है कल नहीं रहेंगे, ये तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, इनकी प्रवृत्ति पक्की नहीं है। आज एक को पकड़ेंगे, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, कभी चार को, कभी तीन को, इनकी प्रवृत्ति पक्की होती ही नहीं। और तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रवृत्ति पक्की प्रवृत्ति है, क्या तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो? तुम निभाने वाले हो, तुम्हारा जो बाप है वो भी प्रवृत्ति को निभाने वाला है। दुनिया में जो प्रवृत्ति हुई है, होती है, वो एक राजा की 10 रानियों से 50 रानियों से, निजाम बादशाह हैदराबाद में 500 रानियां थी, 500 के साथ प्रवृत्ति बनाता है, लेकिन निभाता किसी की नहीं, किसी के साथ नहीं। और भगवान बाप आते हैं तो गायन है कितनों के साथ प्रवृत्ति निभाई? 16,108 के साथ प्रवृत्ति निभाता है, कभी किसी को धक्का देके बाहर नहीं करता है, अपने आप भाग जाए वो दूसरी बात। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है हमारा बाप, हमारा बाप पक्का, तो हम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। फिर हम याद किसको करेंगे? जो प्रवृत्ति मार्ग में पक्का है उसी रूप को याद करते हैं भक्ति मार्ग। इसलिए बोला आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, ये सीढ़ी बीढ़ी का चित्र है, ये भी नहीं बताना है। पहले पहले सीढ़ी के चित्र पर नहीं ले जाना है। क्या कहा? कहाँ ले जाना है? नहीं, ऐसा नहीं समझाना चाहिए कि सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। नहीं, इनसे सारी सृष्टि की आत्माओं का पता नहीं चलता। मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माओं का पता इसमें नहीं है। अता पता सिर्फ किसका पता है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी हिस्ट्री है। ये तो डिटेल है 84 जन्म लेने वालों का। पहले नंबर में वो बात है। कौन सी बात? समझाने की कौन सा चित्र पहले है? त्रिमूर्ति का चित्र है और शिव। त्रिमूर्ति के चित्र में भी शिव है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदु का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब साकार बनते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, संबंध भी बदलते हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति को ही तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बस ये तीन ही कहते हैं ना। त्रिमूर्ति शिव का और तो कोई चित्र है ही नहीं। पीछे है लक्ष्मी नारायण का, बाकी तो कोई जो भी चित्र है वो सब फालतू है। क्या कहा? सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा समझानी गहरी बात किस कौन सी चित्र पर समझानी? त्रिमूर्ति के चित्र में। इतने ढेर के ढेर चित्र ये भक्ति मार्ग में रखे हुए हैं, अथाह चित्र हैं, ढेरों के ढेर चित्र हैं, 8 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले। ये जैसे बाबा ने सुनाया कलकत्ते की ये काली माता कितनी भुजाएं देते हैं, है? भुजाएं माने सहयोगी आत्मा है। सहयोगियों की चिंता कौन करता है? एवरलास्टिंग जो ये यही पक्का करे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो भुजाओं की चिंता करेगा? किसको भुजाएं ज्यादा दिखाते हैं? जो और नंबरवार ब्रह्मा हैं उनको भुजाएं दिखाते हैं, जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है उसको भुजाओं की दरकार, भुजाओं की दरकार नहीं है। उसका पुरुषार्थी रूप भी जो शंकर है ना, उसको भुजाएं नहीं दिखाते हैं और ब्रह्मा को ढेर की ढेर 1000 भुजाएं दिखाते हैं। क्यों? अरे भारत में इतने विदेशी आक्रांताएं आए, भारत में आक्रमण किए, क्या समझ करके आक्रमण किए? क्यों क्यों कमजोर समझा? है? नहीं, जितने भी हिस्ट्री में विदेशी आक्रांताएं आए वो लाखों की तादाद में अपने सहयोगी लेकर के आए, अपने को बड़ा बलवान समझा और भारत को कमजोर समझा, क्योंकि इनके पास तो इतने सहयोगी, इतनी बड़ी सेना नहीं होती थी। भारतवासियों का विश्वास क्या है? है? भारतवासी जो पांडव थे, पांडवों को किसका विश्वास था, किसका आधार था, है भगवान का, एक भगवान दूसरा नहीं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक के ऊपर भरोसा, एक ही हमारा बल, एक के ऊपर हमारी आस लगी हुई है। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है, जिसमें एक ही आस है, इसकी एक ही एक के ऊपर ही विश्वास है, एक को छोड़ तुम्हें छाण गति दूसर नहीं, राम बसो तिनके मन में, हे भगवान राम तुम किसके दिल में बसो है, उसके मन में बसो जिनको एक के अलावा दूसरी गति है ही नहीं। नहीं समझ में आया तो बोला ये दस भुजा वाले आठ भुजाएं वाले, जैसे कलकत्ते की ये महाकाली है, कितने भुजाओं वाली है, अभी ऐसे कोई चित्र होता ही नहीं है, है? दुनिया में ऐसा कोई चैतन्य चित्र होता है, है? जिसको इतनी भुजाएं होती हो, होता ही नहीं। आत्मा संपूर्ण बनती है तो अकेली जाती है और अकेली अकेली आती है, कोई सहयोगी भुजाओं के साथ जाती है, सहयोगियों को लेकर आती है, नहीं बिल्कुल ही नहीं, न किसको आठ भुजाएं न छह भुजाएं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो तो है ऊंचे से ऊंचा निराकार। कौन ऊंचे से ऊंचा? भगवान ऊपर में रहने वाला, हम आत्माओं के साथ रहने वाला, कहाँ रहने वाला, आत्माओं के साथ, संपन्न स्टेज धारी आत्माओं के साथ ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। बस बाकी तो ये सारी मनुष्य शक्ति है, देवताओं की, क्षत्रियों की, इस्लामी बौद्धियों की, क्रिश्चियन आदि की, ये सारी शक्ति चक्र मनुष्य शक्ति का चक्र चक्कर खाता है। क्या ये सारी मनुष्य शक्ति चक्कर खाती है? तो पहले पहले जब भी किसी को समझाओ या कुछ भी कहो तो बोलो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, यहाँ तुम जो आए हो, यहाँ आकर के जो तुम्हारा बेहद का पाप है उससे फिर ये हम वर्षा लेते हैं, किससे, कौन सा वर्षा, स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, बेहद के पाप से कौन सा वर्षा लेते हैं, स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाप से वर्षा लेंगे तो बाप के पास जमीन जायदाद का वर्षा होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा, बाप के पास मेहलमानियों का वर्षा होगा तो मेहलमानियों का वर्षा देगा, देगा ना। बाप के पास मल्टी मिलियनायर होंगे तो वो वर्षा देगा, बहुत कल कारखाने होंगे तो कारखानों का वर्षा देगा, बाप के पास पहले वर्षा होना चाहिए कि बच्चों के पास पहले होगा, तो उसे बाप का परिचय दो ना, किस बाप का परिचय, अरे जिस निराकार बाप की बात करते हो उस निराकार को तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि सब बोलते चले आए हैं। क्या बोलते चले आए, कि वो निराकार है, वो कोई खास बात नहीं हुई, आत्माएं भी निराकार, चींटी निराकार तो चींटी का बाप भी चींटी जैसा, हाथी डौल डील वाला तो बाप भी डौल डील वाला, सांप लंबा लंबा तो बाप भी लंबा लंबा, हम आत्माएं निराकार ज्योति बिंदु। गीता में लिखा अणु अणियां समण स्मरेति, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, तो वो आत्मा अति निराकार है, तो आत्माओं का बाप भी निराकार है, वो कोई नई बात नहीं। नई बात फिर क्या है? वो नई बात है जो सृष्टि के आदि काल से ही, सतयुग से ही, न देवताएं जानते थे, न क्षत्रिय जानते थे, न द्वापर युग के महर्षि जानते थे, ऋषि मुनि नहीं जानते थे, न कलयुग में कोई मनुष्य जानते थे कि ये सृष्टि एक रंगमंच है। तो इस रंगमंच का हीरो पार्टधारी कौन है, कोई जानते थे? जिसको नहीं जानते थे उसका परिचय दो, उसी का परिचय बाप देने आया है। क्या आत्माओं का बाप मूल रूप में है? बेसिक रूप में तो ये परिचय देता है क्या कि तुम आत्मा है ज्योति बिंदु, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है, लेकिन बिंदु बिंदु तो सभी आत्मा है। कैसे पता चलेगा कि बिंदु, बिंदु 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 में मेरा स्पेशल बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, सभी धर्म पिताओं का बाप कौन है, वो कैसे पता चले? वो परिचय देने के लिए शिव बाप को दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके वेद वाणी चलानी पड़ती है। क्या जिस वेद वाणी को इस दुनिया में कोई नहीं समझते, उस वेद वाणी का जो पहला पहला हिस्सा है जहां से सारे वेद निकलते हैं, गीता भगवत गीता, उसके भी अर्थ को दुनिया नहीं जानती, वही ज्ञान देने के लिए, गीता ज्ञान देने के लिए जन्म मनस के चक्र से रहित जो शिव है आत्मा सुप्रीम सोल, उसको आना पड़ता है। क्योंकि जन्म मन के चक्र से रहता है तो तीनों कालों का ज्ञाता है, हम आत्मा जन्म मन के चक्र में आने वाली है तो तीनों कालों की बात भूल जाती है, अज्ञानी है। तो हम मनुष्य सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं जो अज्ञानी हैं, उनको बेसिक नॉलेज आकर देता है कि तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। लेकिन उस वाणी में ये भी बताता है कि वो ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा स्पेशली इस मनुष्य सृष्टि में कौन से मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, वो परिचय तुम बच्चों को देना है, जिससे प्रैक्टिकली तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मैं बाप हूं, निराकार बाप, निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? है निराकारी वर्षा है ज्ञान, तो निराकारी वर्षा ज्ञान तो मिला, लेकिन उस ज्ञान को ये भी बता दिया अपनी गोद तो न सा चढ़े, जो जितना मंथन करेगा उस ज्ञान का, क्योंकि बोला है मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार, मुरली को धारण करने वाले से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरली घर से भी प्यार नहीं हो सकता। मुरलीधर को पहचाना ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय बच्चे देते ही नहीं। अब बच्चे बेचारे क्या करें, खुद ही नहीं समझा है कि त्रिमूर्ति के चित्र में असली वो बाप कौन है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, कौन है, है? आत्माओं का बाप शिव है, उससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, या मनुष्य सृष्टि का बाप है जो स्वयं पहले देवताओं में बड़ा देवता बनता है, फिर मनुष्य आत्माओं को देवत्व का वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है। हर मनुष्य आत्मा को स्वर्ग का वर्षा देता है, नंबर वन। कोई को लंबे समय का स्वर्ग का वर्षा, 2,500 वर्ष का वर्षा भी मिलता है, कोई को एक दिन का वर्षा मिलता है, कोई को एक जन्म का वर्षा मिलता है। जो भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं परमधाम से, सात्विक आत्मा आती है तो जिसमें प्रवेश करती है उसे शरीर में दुख भोगती है, भोग ही नहीं सकती, वो तो सात्विक आत्मा है, जब चाहे प्रवेश करेगी, जब चाहे निकल जाएगी। उस देहधारी आत्मा को दुख होता है, प्रवेश करने वाली आत्माओं को कोई दुख नहीं होता है। तो ऊपर से आने वाला जो धर्म पिता है उसको एक जन्म का या एक दिन का ये सुख का वर्षा किससे मिलता है? शिव बाप उनके सामने प्रत्यक्ष होता है, उन धर्म पिताओं के सामने शिव बाप प्रत्यक्ष होता है, उसको वो पहचानते हैं, पहचानते हैं, वो तो पहचानते ही नहीं। तो कौन पहचानता है? 100% जो पहचानता है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप। कैसे पहचानता है? मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। मुरली ही हमारी लाठी है, मुरली ही हमारा ज्ञान है, वो गीता ज्ञान है जो बाप शिव ब्रह्मा के मुख से हमको गीता ज्ञान देते हैं। परंतु वो गीता ज्ञान, गीता ज्ञान तो है, क्या नहीं है, है? क्या नहीं, ज्ञान अमृत नहीं है। मुरली में भी बोला क्या, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो बोला, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उस समय ब्रह्मा ने या ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस ज्ञान का मंथन नहीं किया। जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ज्ञान का मंथन नहीं किया। जैसे गाय है, गाय खाती है, तो देखा होगा गाय पालने वाले जानते होंगे, गाय जब जुगाली करना बंद कर देती है तो क्या समझते हैं, है, बीमार है। जुगाली करती है तो स्वस्थ है, जुगाली नहीं करती है तो बीमार है। ऐसे ही जो ब्रह्मा के पुत्र मुरली का ज्ञान, मुरली का मंथन करते थे, करते ही नहीं थे, बाबा ने तो मना कर दिया। गीता ज्ञान है, अभी गीता ज्ञान अमृत कहेंगे ही नहीं, तो गीता ज्ञान अमृत कब से कहें, है? ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चा है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी का मंथन करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, जुगाली करता है गाय की तरह, मुंह में भोजन डाला निगल लिया तो रस बनेगा, खून बनेगा नहीं, तब खून बनता है जब उसके वो चबाते हैं, चबाते हैं तो चबाने के बाद उससे रस बनता है, उससे खून बनता है। ऐसे ही जो ब्रह्मा के मुख से बोला गया, वेदवाणी कहो, गीता ज्ञान कहो, मुरली कहो, उसको जिन्होंने मंथन किया तो ब्रह्मा के रहते तो कोई ने मंथन किया नहीं। ब्रह्मा के बाद फिर जो बच्चे आते हैं यज्ञ के आदि में, जिन्होंने शरीर छोड़ा था, शरीर छोड़ करके फिर दोबारा जन्म लेकर आते, वो अपने पूर्व जन्म की ज्ञान की प्रारब्ध लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? आते हैं। मंगलवार वो बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं? राम जैसी आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई, फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए फेल हो गई। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लिया या नहीं लिया? तो ईश्वरीय ज्ञान जो लेते हैं वो विनाशी है या अविनाशी है? है अविनाशी है। बेहद का बाप का ज्ञान है, जरूर अविनाशी होगा। हद के बाप से जो ज्ञान मिलता है वो तो विनाशी है। आज डॉक्टर भी पढ़ी अगले जन्म में भूल जाते हैं, इस जन्म में इंजीनियरिंग पढ़ी अगले जन्म में भूल जाते हैं, वो विनाशी ज्ञान नहीं है। तो दोबारा जन्म लेकर के वो आत्माएं जब आती हैं ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद, तो वो आत्माएं पूर्व जन्म की ज्ञान की प्रारब्ध लेकर के आती हैं, जिसको बाप कहते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है, अगर बड़ा बच्चा खुदा न खास्ता बाप से अलग हो जाए, तो जो सच्चा बाप होता है वो बच्चे को दादे की कमाई, दादे की प्रॉपर्टी देता है या नहीं देता है? दे देता है। तो राम वाली आत्मा को ज्ञान के बाण दे दिए, क्या जाओ शिकार करो, है शिकार करो, मारो और खाओ, और धनुष दे दिया जिसे शास्त्रों में कहा है चाप, नानक चाप जहाज, शंकर चाप जहाज, जेही चढ़े उतर पारणर, मुरली में बताया चंद्रकांत वेदांत जहाज। तो वो चाप क्या है, वो धनुष क्या है, जो बहुत लचीला हो जाता है। अच्छा धनुष कौन सा होता है? ताने तो कम ताना जाए तो अच्छा नहीं, बहुत तान लिया जाए तो बहुत अच्छा, बहुत लचीला तो बहुत अच्छा, कम लचीला तो उतना अच्छा नहीं। इसलिए उसे धनुष का नाम दिया है शिव धनुष। कैसा धनुष? शिव धनुष। शिव का धनुष कहते हैं दधीचि की हड्डियों से बना था। क्या दधीचि ऋषि ने क्या किया था? जो देवताओं का राजा था, देवताओं का मुखिया था, उसको दान में दे दिया। क्या? अपनी हड्डियां दे दी, हड्डियों का धनुष था। अब दधीचि किसको कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को। हड्डी हड्डी इस ईश्वरीय ज्ञान में स्वाहा की या नहीं की? है हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। तो ब्रह्मा की अर्थात दधीचि ऋषि की जो हड्डियां थी उनसे बनाया हुआ जो धनुष है, उस धनुष के लिए भी ये गायन है कि राम ने क्या किया, शिव के धनुष को भी तोड़ दिया। माने ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर रूपी रथ से हड्डियों से जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दिया, आगे बढ़ क्या करें क्रॉस कर दिया। तो राम को ऐसे दिखाया है, माना कोई धनुष की बात नहीं है, कोई जहाज की बात नहीं है, किसकी बात है? नहीं, शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी जहाज कहो, उसकी बात है। जो शरीर रूपी जहाज मनुष्य शिष्य रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, उसकी याद में सारी मनुष्य आत्माएं उस पर मन बुद्धि से सवार हो जाती हैं। इसलिए बहन है शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ी उतरे पार नर। सिखों ने कह दिया नानक चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर। तो बात है उस मनुष्य शरीर रूपी रथ की। जो मनुष्य शरीर रूपी रथ है नवैया कहो जहाज कहो, उस नवैया या जहाज का खेवैया है परमपिता परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा के तन से कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया एक ही बाप हूँ। क्या आत्मा को भी पार ले जाऊंगा और शरीर रूपी नैया का भी पार ले गई है। पार लगाने वाला है माने इस विषय सागर से, इस विषय वैतरणी नदी से क्रॉस करा देगा, डुबोएगा नहीं। किसके द्वारा? तुम सब पार्वतियां हो, माने तुम सब पार लगाने वाली पार्वतियां हो। जो पार्वतियां ऐसा पुरुषार्थ कराती हैं कि पार लगाती है, डुबोती नहीं है, नरक का दरवाजा खोल के नहीं बैठती है, स्वर्ग का दरवाजा खोलती, इसलिए बाप उनको ये टाइटल देते हैं। क्या? स्वर्ग का गेट है, तुम कन्याएं माताएं जो पार्वतियां हो वो खोलेंगे। तो शरीर रूपी नैया है, उस शरीर रूपी नैया के लिए बोला है कि बेहद का जो बाप है वो बेहद का बाप, उनसे फिर ये हम वर्षा लेते हैं। काय का वर्षा? स्वर्ग का वर्षा, उनसे ये हम वर्षा लेते हैं। उनसे कहकर दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला तो उसके अंदर ही बैठा था ब्रह्मा के, बोलने वाला शिव अंदर ही बैठा है, फिर उनसे कह के दूर क्यों किया? कि भविष्य में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है जिसकी यादगार ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, जिसकी घोषणा मुरली में की थी। क्या 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया के विनाश में सबका विनाश हो जाएगा, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण कहे जाने वाले ब्राह्मण, किसी को पता नहीं रहेगा मेरा बाप कौन इस शशि पर। ब्रह्मा कोई पिता नहीं, पता नहीं था, पता था कि उनका बाप कौन? पता था तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता होने का सवाल ही नहीं। सारी ब्राह्मण मनुष्य शक्ति का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना 10 वर्ष के बाद घोषणा कर दी मुरली में। तो बताया लक्ष्मी नारायण आते, लक्ष्मी नारायण जो हैं वो तो राजा महाराजा का नाम है, नरसिंह नारायण बनने वाले का नाम है। जो सगीर है उसका नाम है या बच्चे का नाम है? सगीर बुद्धि का नाम है ना नारायण, पहले बच्चा भी तो होगा है। तो बताया उस बच्चे के लिए बोलते हैं क्या कि सारी मनुष्य सृष्टि जलमय हो गई, सागर ही सागर, और सागर में पहले पहले कौन आया है? सारी सृष्टि में नई सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले पहले कौन आया है? ब्रह्मा कुमारियां लिखती थी पहले एक चित्र में, अपने सेंटर के सामने एक बड़ा बोर्ड टांगती थी, उसमें कृष्ण का चित्र दिखाती थी, उस चित्र में लात मार रहा है नरक को और हथेली में ले रहा है स्वर्ग को, उसको ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता था क्या श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्या स्वर्ग का वर्षा लेकर तीरी पे बहिष्ठ लेकर के श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये चित्र दिखाया जाता था। अभी वो चित्र उड़ाएगी क्योंकि छत्तर के बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि नई दुनिया कहाँ आ गई, कहाँ श्री कृष्ण है कहाँ नहीं है, कैसे आ गया। अब ये तो कवियों की भाषा है, चित्रकार की चित्रकारी है, भावना में मूर्तिकार ने मूर्तियां गढ़ी, ये भावना की बात है, समझने की बात है। ये तीरी माने हथेली, हथेली माने ये हथेली क्या चीज है? ये हद में है, बेहद में बुद्धि रूपी हथेली में, छत्तर में कोई बुद्धि रूपी हथेली है मनुष्य की जो आई, कहाँ आई? सागर। कैसा सागर? विषय सागर, सारे संसार में विषय वासना फैली हुई है, सबकी बुद्धि में विषय वासना रमण कर रही है। एक कृष्ण आया जिसके बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया की नक्शा, नई दुनिया की प्लानिंग है। कोई मकान बनता है तो पहले सूक्ष्म में बुद्धि में बनता है कि स्थूल बन जाता है, तो ऐसे ये सच रूपी मकान है, ये भी बुद्धि में तैयार होता है पहले पहले। तो परम ब्रह्म रूपी वो आत्मा है जो इस संसार सागर में ऐसी बुद्ध रूपी हथेली बनती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती करती उसमें नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। जिसकी बुद्धि में नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है वो पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया को लात लात मार देता है, जाओ गड्ढे में, नहीं सुनना है तो मत सुनो, नहीं मानना है तो मत मानो। नई दुनिया शुरू होती है, शास्त्रों में भी आया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो तीन बार रची, तीनों बार बिगड़ दी। यज्ञ के आदि में रची कि नहीं है? रची लेकिन पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, तो बोल दिया मुरली ने। विनाश ज्वाला कब से प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। और जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमिक विस्फोट हुए, उसी समय बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो हिरोशिमा थी, शमा माने रोशनी की शमा, हीरो की शमा, हीरो जैसी आत्माओं की शमा, उसके ऊपर एटमिक विस्फोट हुए और वो दुनिया हीरो समान आजाता की नष्ट हो गई। पहली बार ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि नष्ट हो गई, फिर दूसरी बार सन 47 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, नई ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू हुई। और कब खत्म हो गई? सबके लिए घोषणा की, क्षेत्र लिए घोषणा कर दी, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो हो गई, वो नई दुनिया की स्थापना होती है तो उससे कृष्ण की बुद्धि में फिर से नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। अभी तीसरी बार विनाश नहीं हुआ है, हुआ ब्राह्मणों की दुनिया का, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है तीसरी बार एडवांस ब्राह्मणों की, जो कहते हैं हमें बाप मिल गया, भगवान मिल गया, वो कहीं हिलते डुलते तो नहीं है अंदर से, कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, कभी निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे, कभी अनिश्चय बुद्धि, विश्वास उखड़ता है, उखड़ता ठहरता है या नहीं ठहरता है, है? सबसे ज्यादा किस आत्मा की बुद्धि हिलती डुलती है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती कौन आता है? पहला पत्ता आता है कि नहीं? जब पहला पत्ता ही इतने निश्चय अनिश्चय की उसमें आता है चक्र में, तो बाकी जो पत्ते हैं बाद वाले वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में कुछ न कुछ आएंगे या नहीं आएंगे, आते हैं या नहीं आते हैं, अनुभव करते हैं कि जब पहले पहले एडवांस में आए थे तो बड़े सुखी थे, है? उस अवस्था की यादगार मुसलमान लोग भी गाते हैं, अपनी कव्वालियों में बोलते हैं, बड़ा लुत्फ था जब कुआरे थे हम तुम, ऐसे ऐसे करके खूब गाते हैं मस्तों पर, तो बचपन में बड़े खुश थे। अभी लंबी उम्र हो गई ना ब्राह्मणों की दुनिया में, जब ब्राह्मणों की दुनिया में लंबी उम्र हो गई तो तमो प्रधान बने या सतो प्रधान बने? तमो प्रधान बनते हैं। अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं, है? नए नए बच्चे अनुभव नहीं करते होंगे, उनको हो रहा है, हमें तो क्या अनुभव नहीं है, हमें तो पक्का निश्चय कि भगवान बाप आया हुआ। फिर मुरली में बोला है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक से ज्ञान सुनने के बाद एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दूसरों की बातें अगर कान पर धरी और रज रज के सुनी, हाँ ये बात सही है, ये तो हम भी अनुभव करते हैं, तो कान के अंदर समा गई, मंथन चलने लगा, बस। बाप कहते हैं अगर दूसरों से ज्ञान सुना, धारण किया, थोड़ा समय भी धारण किया तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। कैसा ज्ञान हो जाएगा? विचारी ज्ञान, विचारी धर्मों में ले जाएगा, या अभिचारी सूर्यवंश में बना रहेगा, कहाँ ले जाएगा, है? कौन से विचारी धर्म है? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जो भी द्वापर युग से आने वाले द्वैतवादी धर्म हैं, जहाँ दो दो धर्म, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो राज्य होते हैं, उसको द्वैतवादी धर्म कहा जाता है। वो द्वैतवादी क्या कहे जाते हैं? दैत्य। द्वापर युग से किसकी सृष्टि? दैत्यों की सृष्टि, राक्षसी कर्म शुरू होता है, राक्षसी इंद्रियों के द्वारा। तो बताया, ये ज्ञान का फाउंडेशन जो है वो एक का पक्का रहना चाहिए, एक से सुनना चाहिए, एक पर निश्चय कर लिया, मान लिया, जान लिया। यज्ञ के आज में भी ऐसा हुआ था, खून से लिख लिख करके देते थे, हमें भगवान बाप मिल गया, फिर देखो वहां भी विनाश हो गया, यहां भी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, बहुत से तो नोटरी भी कराए देते हैं, शपथ पत्र लिख करके देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, एक की सुनते हैं, एक की सुनी हुई बातों पर मनन चिंतन मंथन करते हैं कि अनेकों से सुनते हैं, है? अनेकों की बातों को कान पर धरते हैं या नहीं धरते हैं, धरते हैं, तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। व्यभिचारी ज्ञान लिया, फाउंडेशन पड़ गया, फाउंडेशन पड़ गया तो वहां द्वापर युग से वो प्रत्यक्ष होने लगेगा, वो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी और देवताओं के सतयुग में भी वो 16 कला संपूर्ण पीढ़ी में नहीं आएंगी, कहां आएंगी, सब कलाओं वाले जो नारायण हैं, दूसरे नंबर का नारायण, तीसरे चौथे आठवें नंबर का नारायण, उन्हीं की प्रजा बनेगी, कमजोर देवताएं बनेंगी या संपूर्ण देवता बनेंगे, है? संपूर्ण देवता तो नहीं बने, अपूर्ण देवता बने, तो अपूर्ण देवताओं में वो ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं प्रवेश करती रहती, कमजोर आत्माएं है ना, इसलिए उनको कंट्रोल कर लेती। यहाँ भी ऐसे ही है, जो ज्ञान पर पूरा गहराई से मनन चिंतन मंथन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, रोज क्लास करते ही नहीं है, अपने धंधे धोरी में मस्त रहते हैं, वो आत्माएं ही जो गीता पाठी ब्राह्मण नहीं बनते, वो फिर दूसरों की बातों की सुन करके उनके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभावित माने प्रजा, उनकी प्रजा बन जाते हैं। तो जो बेहद का बाप है
उससे हम ये बेहद का वर्षा लेते, हम माने कौन हम ये बेहद का वर्षा लेते, लक्ष्मीनारायण की चित्त तरफ की चित्त की तरफ इशारा करते, क्या वर्षा लेते हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का वर्षा लेते हैं, स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, 16 कला संपूर्ण स्वस्थिति में स्थित होने का वर्षा लेते हैं, स्वर्ग का वर्षा, क्योंकि स्वर्ग का रचने वाला वो है, क्या कहा, स्वर्ग का रचने वाला वो है, ये नहीं, इनके फॉलोअर नहीं, मैं नहीं, मैं माने वो मन है, हाँ वो माने जो चैतन्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला बाप का प्रत्यक्षता उस चीज का मनाते हैं उसकी तरफ इशारा किया, ये माने ये ब्रह्मा बाबा ने, मैं माने शिव ने, देखो ये है ना ऊंचे थे ऊंचा भगवान, बच्चों के सामने अपनी बोली हुई बात का समर्थन कराना चाहते हैं, देखो ये है ना ऊंचे से ऊंचा भगवान, माने बच्चों से समर्थन क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ और माने बैठे, अरे ऊंचे से ऊंचा भगवान किसको माने बैठे हैं, है? हम ब्रह्मा को मानिए, ब्रह्मा को माने बैठे, अच्छा एडवांस वाले, एडवांस वाले किसको ऊंचे थे ऊंचा भगवंत माने बैठे हैं, है? माने बैठे जब ज्ञान में आए थे भट्टी की थी तो निराकार ज्योति बिंदु को याद नहीं करते थे, झूठ बोल रहे हो, है? बोलो ब्रह्मा किसको याद करते हैं, ज्योतिबिंदु को याद करते थे ना, प्रवृत्ति को तो यहाँ नहीं कहते थे। तो जो ब्रह्मा के बच्चे थे, हम बच्चे भी तो ब्रह्मा के थे ना, ब्रह्मा से ज्ञान लिया ना, ब्रह्मा कुमार थे ना, कि पहले ही प्रजाति का ब्रह्मा कुमार थे, ब्रह्मा कुमार थे। तो हम किसको याद करते थे, हमारा फाउंडेशन क्या है, निराकार को याद करना। इसलिए बाप समर्थन लेना चाहते हैं बच्चों से, क्या देखो ये है ना ऊंचे से ऊंचा भगवान, त्रिमूर्ति के चित्र पर कई दिन से बात चल रही है, क्या जो मुरलियां चल रही हैं वो त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर खास चल रही है, ये है ना ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो त्रिमूर्ति के चित्र में किस तरह इशारा किया बाबा ने, ब्रह्मा की तरफ है, विष्णु की तरफ है, शंकर किसकी तरफ, शंकर की तरफ। हाँ, जो ऊपर त्रिमूर्ति के ऊपर शिवलिंग दिखाया गया है, अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है, वो अव्यक्त मूर्ति की तरफ इशारा किया, ये है ना ऊंचे से ऊंचा भगवान, माने त्रिमूर्ति के चित्र में भी ऊंचे से ऊंचा है, ब्रह्मा से भी ऊंचा, विष्णु से भी ऊंचा और शंकर से भी ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा भी तो ऊंचे से ऊंचा देंगे ना, क्या नीचे से ऊंचा वर्षा क्या है, सुखधाम या शांतिधाम, शांतिधाम ऊंचे से ऊंचा वर्षा नहीं है, शांतिधाम है तो सभी धर्मों की आत्माएं जाएंगी, जो धर्म के विपरीत हैं, नास्तिक है बिल्कुल, वो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे,
जाएंगे,
वो भी जाएंगे। तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा वो है
नहीं,
क्या है ऊंचे से ऊंचा वर्षा, सुख दान, ऊंचे से ऊंचा वर्षा, सुख का जो ऊंचे से ऊंचा वर्षा है, जो बच्चे बाप से लेते हैं तो बाप के पास ऊंचे से ऊंचा वर्षा होगा तब ही देगा, या नहीं होगा जिस बाप के पास वो देगा, जमींदार बाप होगा तो ढेर सारी जमीन का वर्षा बच्चे को देगा, बाप के पास जमीन है ही नहीं तो जमीन का वर्षा देगा। तो ये जो स्वर्ग का वर्षा है, क्या कौन सा वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, तो कौन सा बाप देगा, जिस बाप के लिए मुरली में बोला है ब्रह्मा मुख से बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है, क्या क्या स्वर्ग की दुनिया के ऊपर भी उसकी बपौती है और नरक की दुनिया के ऊपर भी उसकी बपौती है, नरक की दुनिया का भी सरदार और स्वर्ग की दुनिया का भी सरदार, दोनों ही दुनिया मेरी है ऐसे बोलता, वो कौन सा बाप बोलता,
मनुष्य
सृष्टि का बाप बोलता, शिव बाप तो सुख की दुनिया में आता ही नहीं, वो क्यों बोलेगा, तो बरोबर जब भारत में शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, क्या कहा, जब भारत में शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, किसकी जयंती, शिव बाप की जयंती या शिव बाबा की जयंती,
शिव बाबा की जयंती,
शिव बाबा की जयंती, अभी मनाते हैं कि नहीं, दुनिया वाले भी मना भारत वासी दुनिया वाले भी मनाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मनाती। तो जो मनाते हैं वो झूठी जयंती मनाते हैं या सच्ची जयंती मनाते हैं? जो झूठी
है जानते ही नहीं है।
अच्छा, वो नहीं जानते, हम तुम जानते हैं है? वो नहीं जानते, दुनिया वाले नहीं जानते, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते, नहीं जानते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि का दिन होता है उसी शिवरात्रि के दिन को दुनिया वालों को फॉलो करके संसद से मनाते चले आ रहे हैं या 47 से दुनिया की देहरादूनी मनाते चले आ रहे हैं, या उन्हें पता है शिव बाबा कब आया है? मुरली में तो बाबा बोलते हैं ब्रह्मा मुख से, क्या बोलते हैं कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, मेरा किसी को पता चलता ही नहीं, ब्रह्मा को पता चलता है? है ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ लेते हैं बिंदी की बात, जो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप जो बिंदु है उसकी बात। अरे निराकार की जयंती होती है या साकार की जयंती होती है? जयंती तो साकार की होती है ना, जन्मदिन किसका मनाया जाता है? साकार का मनाया जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी कृष्ण की जन्म तिथि तारीख सब कुछ बताते हैं, महीना भी बताते हैं, किसी तारीख भी बताते हैं। क्या शिव की तिथि तारीख बताने की बात नहीं है? और इस सृष्टि में भी वो तिथि तारीख निश्चित होती है जिसके लिए बाबा ने कहा है कि सब धर्मों की तिथि तारीख है कि इतने वर्ष हुआ इस धर्म को, विक्रम संवत विक्रमादित्य से चला है, ईसाइयों का संवत ईसा से चला है, ख्रिस्त संवत मोहम्मद से चला है। हर धर्म का धर्म पिता के हिसाब से संवत चलाया जाता है। जब से उस धर्म की शुरुआत हुई तो जो देवी देवता सनातन धर्म है उसकी भी तो नई सृष्टि में कभी शुरुआत हुई होगी ना, उस संवत को कोई जानता ही नहीं। बाबा बताते हैं, क्या बताते हैं? अरे बाबा ने संवत बताया, संवत एक 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 लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा हुआ है। वो ब्रह्म कुमारियां बता नहीं बताएंगे, कहीं सन 36। अच्छा तिथि तारीख बताओ, बताएंगे नहीं बताएंगे? जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं उनसे पूछो, महाशिवरात्रि का वो दिन बताओ, तिथि तारीख बताओ, महीना बताओ, तो कहें माघ मास फाल्गुन मास। देखो दुनिया की तरह हो, वास्तव में संबत एक 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 नई दुनिया की राजधानी संसार में प्रत्यक्ष होगी, फाउंडेशन पड़ेगा, तभी कहा जाएगा संबत एक 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 कि नहीं। अभी तो नहीं हुआ है, होना है या हुआ है?
होना है।
बाकी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में मनाया, वो मनुष्य सृष्टि के बाप के आने की प्रत्यक्ष होने की बात है। ये समझ में आता है कि रामली आत्मा जो पूर्व जन्म से ज्ञानवानों का ज्ञान धनुष का बुद्ध रूपी तरकस का वर्षा लेकर के आई थी वो संचक्कर के प्रत्यक्ष हो रही है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में रावण कुंभकर्ण जैसे जो ब्राह्मण हैं उनको तीखे तीखे ब्राह्मण बाण मार रही है, वो तिलमिला रही है अंदर से, और हम हम तिल मिला रहे हैं कि खुश हो रहे हैं? हम खुश हो तो बताया तो जरूर क्या करके कहते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन भी उसको ही कहते हैं, तो आकर के क्या किया होगा? वो तो रचयिता है ना, अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवेनली गॉड फादर। हेवेनली शब्द क्यों लगाया गॉड फादर से पहले? हेवेन का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता होगा ना।